का था, रूह वही, रूप नया।
शोलागढ़ है 34 किलोमीटर के पिछले भाग में आपने सुना कि श्रेया को अगवा किए हुए लोगों से बचाकर सोहराब, सलीम और श्रेया कोठी से निकलकर स्टेशन की तरफ चले गए। मालगाड़ी पर बैठने के बाद सोहराब, सलीम और श्रेया कहीं रवाना हुए। क्या वजह थी कि सोहराब टैक्सी की बजाय एक मालगाड़ी से रवाना हुआ? कौन थे वो चारों जिन्होंने श्रेया को अगवा करना चाहा और कौन था उनका बॉस? ये सारे रहस्य जानने के लिए सुनिए शोलागढ़ का ये भाग। उसी रात काले रंग की दो बड़ी कारें डे स्ट्रीट रोड पर सन्नाटे को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थीं। टायरों की चरचराहट रात के सन्नाटे में अजीब सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कई सारे चमगादड़ चिचिया रहे हों। इस रोड पर गाड़ियों का आना जाना आम सी बात थी। रात का आखिरी पहर था। दोनों ही कार में ड्राइवर को मिलाकर तीन तीन आदमी मौजूद थे। दोनों ही कारों की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं थी। कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ी सी इमारत के सामने दोनों ही कारें रुक गईं। कार रुकते देखकर बिल्डिंग का गार्ड चौकन्ना होकर बैठ गया। दोनों कारों के ड्राइवर उतरकर गार्ड के पास पहुंचे और उससे बातें करने लगे। बात एक पता पूछने से शुरू हुई और फिर दोनों ने गार्ड को इस तरह बातों में उलझा लिया जैसे इनकी काफी दिनों से सनाशाई हो। इस बीच बाकी चारों लिफ्ट के जरिए ऊपर चले गए। लिफ्ट थर्ड फ्लोर पर जाकर रुकी थी। लिफ्ट से निकलकर चारों दबे कदमों से आगे बढ़ने लगे। गलियारे में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों एक फ्लैट के सामने जाकर रुक गए। फ्लैट के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। उनमें से एक ने जेब से चाबी का गुच्छा निकाला और एक एक करके कई चाबियां ताले में डालकर उसे खोलने की कोशिश करने लगा। आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल ही गई। एक चाबी को अंदर डालकर हिलाने डुलाने पर ताला खटके के साथ खुल गया। चारों बड़े आराम से अंदर दाखिल हो गए। उनमें से एक ने जेब से मोबाइल निकालकर उसकी रोशनी में स्विच बोर्ड तलाशा और लाइट जला दी। दूसरे ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। ये एक बड़ा सा हॉल नुमा कमरा था। यहां चारों तरफ पेंटिंग ही पेंटिंग थी। चारों खड़े उन पेंटिंगों को कुछ देर देखते रहे। उसके बाद पेंटिंग बड़ी तेजी से उल्टी पलटी जाने लगी। कुछ देर बाद पूरा हॉल ही तहस नहस हो गया। वहां का काम निपटाकर दोनों लॉबी से होते हुए बगल वाले कमरे में चले गए। लाइट जलाकर कमरे का जायजा लेने लगे। वो बेडरूम था। वहां की दीवारों पर तीन पेंटिंग लटक रही थी। उन्होंने बड़े ध्यान से उन पेंटिंगों को देखा लेकिन शायद उन्हें अपनी पसंद की पेंटिंग नहीं मिली थी। वो दोनों लाइट बुझाकर बाहर आ गए। लौटकर उन दोनों ने हॉल में खड़े बाकी दोनों से वापस चलने के लिए कहा। उन्होंने यहां की लाइट बुझा दी और बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया और ताले को लटकाकर चले गए। जबरन खोला गया ताला दोबारा बंद हो जाए ये बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि उन्होंने ताले को बंद करने की कोशिश भी नहीं की थी। लिफ्ट से नीचे आकर वो चारों बड़ी सावधानी से कार में बैठ गए और उनमें से एक ने ड्राइवर को मिस कॉल मारी। नतीजे में दोनों ड्राइवर ने गार्ड का शुक्रिया अदा किया और आकर कार में बैठ गए। कार तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ चाय का असर, कुछ बीड़ी का असर और कुछ सुबह की ठंडी हवाओं का खलल था कि सार्जेंट सलीम फिर से चैतन्य हो गया। उसका दिमाग काफी फुर्ती से काम करने लगा। नींद कुछ पल के लिए गायब हो गई। उसने बीड़ी का एक गहरा कश लिया और तन कर बैठ गया। उसके बाद उसने इंस्पेक्टर सोहराब की तरफ देखते हुए कहा, अब मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं कि आप उछल पड़ेंगे, इसलिए ट्रेन के इस रॉड को जरा जोर से पकड़ लीजिए। इंस्पेक्टर सोहराब ने घूमकर उसकी तरफ देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। शियाली जिंदा है। इतना कहने के बाद सार्जेंट सलीम ने इंस्पेक्टर सोहराब के चेहरे को गौर से देखा। उसे उम्मीद थी कि सोहराब उसकी इस बात पर बुरी तरह चौंक पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे सलीम को निराशा हुई। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं जंगल में उससे मिलकर आया हूं, बस जरा सी चूक हो गई वरना मेरी शादी होने वाली थी उससे और मैं वहीं जंगल में बस जाता। सलीम ने पूरे जोश से बताया। पूरी बात बताइए शुरू से आखिर तक, सोहराब ने पूरी गंभीरता से कहा। सार्जेंट सलीम ने उसे शुरू से आखिर तक की पूरी दास्तान सुना डाली। ये भी बताया कि किस तरह से श्रेया को जंगली मार डालना चाहते थे। लेकिन उनमें से कुछ जंगलियों को उस पर रहम आ गया और उन्होंने उसकी जान बख्श दी। उसे उन्होंने गुफा में छुपा दिया था। सर्जन सलीम ने गुफा में फंसने और फिर निकलने की बात भी उसे संक्षेप में बता डाली। सोहराब ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसके इस व्यवहार पर सर्जन सलीम को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, लगता है आपको यकीन नहीं हुआ है मेरी बात का।
अरे सच कह रहा हूं, शयाली जिंदा है और जंगलियों के बीच में खुश है।
शहर चलकर एक पुलिस की टीम बनाकर जंगल में तलाश शुरू करवाइए और केस को फिनिश कीजिए।
देखते हैं।
सोहराब के इस ठंडेपन पर सलीम को बड़ा गुस्सा आया। वो खामोश होकर बैठ गया। सोहराब पीछे भागती रेल की पटरियों को देखते हुए कुछ सोच रहा था। कुछ देर बाद सलीम ने बात दोबारा शुरू की। आप यहां कैसे?
शूटिंग देखने आया था।
शूटिंग देखने? अरे आपको तो रोल करना चाहिए था, तो अब आप वापस क्यों जा रहे हैं?
क्योंकि शूटिंग कैंसिल हो गई है।
मतलब?
अब इसका क्या मतलब बताऊं? अरे मतलब शूटिंग कैंसिल हो गई है।
आपको कैसे पता चला, जबकि आप तो सुबह ही निकल लिए हैं।
मुझे शैलेश जी अलंकार की जेब से कागज का टुकड़ा मिला था, उस पर पूरा शूटिंग शेड्यूल लिखा हुआ था, इसलिए मैं इधर आ गया।
सोहराब ने भागती पटरियों पर नजरें जमाए हुए जवाब दिया। फिर आप वापस क्यों जा रहे हैं?
इसलिए कि तुमने और श्रेया ने यहां आकर पूरा प्लान बिगाड़ दिया। दूसरी बात कि मैंने श्रेया का अपहरण करने वाले 4 लोगों को पीट दिया था, इसलिए मेरी पहचान संदिग्ध हो चुकी है और रुकने से अब कोई फायदा नहीं।
सोहराब ने उसे अपने आने और शैलेश अलंकार से रात के सन्नाटे की मुलाकात होने और फिर श्रेया के अपहरण की पूरी बात बता दी। उसके बाद उसने कहा,
तुम्हारी मौजूदगी और इतने हंगामे के बाद मुझे पूरा यकीन है कि शूटिंग कैंसिल हो जाएगी।
तो क्या शैलेश और कैप्टन किशन भी संदिग्ध हैं?
श्रेयाली से संबंध रखने वाला हर आदमी संदिग्ध है।
लेकिन अब तो श्रेयाली मिल गई है ना? सोहराब ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा।
यहां तक कि श्रेया भी संदिग्ध है।
श्रेया क्यों संदिग्ध है? उसका क्या वास्ता इस मामले से?
श्रेयाली के गायब होने की शाम से लेकर आज तक वो हर जगह इस केस में मौजूद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक 3 बार उस पर जानलेवा हमला भी हो चुका है।
3 बार? सलीम ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा।
दिमाग का इस्तेमाल किया करो, सिर्फ सवाल मत पूछा करो।
इंस्पेक्टर सोहराब ने उसकी तरफ देखते हुए कहा,
पहली बार उसे जंगलियों ने मारने की कोशिश की, दूसरी बार उसे कब्र में जिंदा दफनाने का प्लान था, और तीसरी बार तांगे पर मारने की कोशिश की गई थी।
दफनाने की कोशिश? सलीम की आंखें फैल गईं।
वो चारों उसे ले जाकर एक बड़े से गड्ढे में डालकर ऊपर से मनो मिट्टी डालने वाले थे। उन्होंने जंगल में एक बड़ा सा गड्ढा पहले ही तैयार कर रखा था। पता भी नहीं चलता कि उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। खैर रही कि मौके से मैं वहां पहुंच गया और श्रेया की जान बच गई। उस पर फिर हमला हो सकता है, यही वजह है कि मैंने टैक्सी की जगह ट्रेन से सफर करने को तरजीह दी। हमारे अलावा तुम दोनों ही निहत्थे हो। टैक्सी पर हमला होने की सूरत में हम बहुत देर तक टिक नहीं पाएंगे उनके सामने।
हमला तो ट्रेन पर भी हो सकता है।
नहीं, अब ये ट्रेन सीधे राजधानी पहुंचकर ही रुकेगी, और दूसरे ट्रेन की पटरियों के साथ पीछा करना काफी मुश्किल होता है।
मान गए बॉस, मैं खामखा नाराज था कि टैक्सी से क्यों नहीं गए। क्या तांगे वाला हमला भी श्रेया पर ही हुआ था?
यकीनन।
ओह, इसलिए आप हमारे साथ नहीं आए? कितने लोग थे वो?
2। दोनों के ही पैरों में गोली लगी है, इसके बावजूद वो किसी तरह वहां से अपनी कार से फरार होने में कामयाब रहे।
अरे तो हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए था, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया आपने?
पुलिस वालों की तरह मत सोचा करो, हमारे लिए हमला करना केस नहीं है, पूरा केस इससे कहीं ज्यादा अहम है। 2 प्यादे गिरफ्तार करके आप केस सॉल्व नहीं कर सकते।
सोहराब की इस बात पर सलीम खिसिया कर रह गया। कुछ देर बाद सोहराब ने कहा,
आज दिन भर और रात भर खूब आराम कर लो, कल से काम शुरू करो।
जो हुक्म मेरे आका। सलीम ने गर्दन को जरा झुकाते हुए कहा।
हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि श्रेया का इस पूरे मामले में क्या रोल है, कौन है जो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, और सबसे अहम सवाल यह है कि इन हमलों की वजह क्या है।
कुछ देर खामोशी रही, उसके बाद अचानक सलीम को कुछ याद आया और उसने फिर बात छेड़ दी। आप यहां शूटिंग देखने तो नहीं आए होंगे, और फिर एक जासूस को इतनी फुर्सत कहां कि वो भेस बदल बदल कर शूटिंग देखता फिरे। सलीम ने आखिरी वाक्य मुस्कुराते हुए कहा।
तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं ना, इसमें एकदम हुड़क चुल्लू लग रहे हो,
सोहराब ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ, आपने मुझे जंगलियों के कपड़ों में नहीं देखा, तब मैं कुड़क चुल्लू लग रहा था। आपने बताया नहीं।
क्या?
यही कि आप यहां क्या करने आए थे।
तुम्हारी तलाश में।
बेवकूफ मत बनाइए,
आप ऑलरेडी हैं, बनाने की जरूरत नहीं है।
सलीम को जम्हाई आने लगी, वो दरी पर लेट गया और कुछ देर बाद ही उसके खर्रांटे सुनाई देने लगे। हाशना इस वक्त शेक्सपियर कैफे में बैठी कॉफी पी रही थी। कुछ देर बाद मजबूत जिस्म का एक नौजवान आकर उसके सामने की सीट पर बैठ गया। हमने काफी तलाश किया लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा, आने वाले ने हाशना से कहा, लेकिन हम जल्दी पता लगा लेंगे। तुम्हें कितना समय और लगेगा? उम्मीद है कि आपका काम एक हफ्ते में हो जाएगा, ये बात तो तुमने पिछली बार भी कही थी। मैडम, वक्त तो लगता ही है ना ऐसे कामों में, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दुनिया कोशिश से नहीं नतीजों से चलती है, मुझे नतीजा चाहिए। आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी, आप बेफिक्र रहिए। कॉफी पियोगे? इसके आश्वासन को नजरअंदाज करते हुए हाशना ने पूछा। नो थैंक्स मैम, आई एम गोइंग नाउ। हाशना लापरवाही से उसे जाते हुए देखती रही। ट्रेन स्टेशन पर कुछ देर में पहुंचने वाली थी। इंस्पेक्टर सोहराब ने सार्जेंट सलीम को जगा दिया और उसकी जेब में 2,000 रुपए रखते हुए कहा,
तुम श्रेया को लेकर गुलमोहर विला पहुंचो, मैं कुछ देर में आता हूं।
क्या श्रेया को भी गुलमोहर विला ले जाना है?
फिलहाल यही कीजिए।
सोहराब के इस फैसले से सलीम की बांछें खिल गईं।
अब जरा घूमने फिरने में मजा आएगा, डांस के लिए एक बढ़िया पार्टनर भी मिल गया है,
उसने मन ही मन सोचा। तभी सोहराब की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हो गई। वो कह रहा था,
खुश मत होइए, श्रेया को तुम कोठी से बाहर नहीं ले जा सकोगे।
सलीम ने बुरा समूह बनाते हुए कहा, तो फिर उसे उसके घर ही छोड़ आता हूं।
बकवास बंद कीजिए, आप श्रेया से इस दौरान ये मालूम करने की कोशिश कीजिएगा कि उस पर हमले क्यों हो रहे हैं, या वो इसके जरिए हमारी सहानुभूति हासिल करके हमारे करीब आना चाहती है।
इससे भला उसे क्या फायदा?
वैसे वो आप में खासी इंटरेस्टेड है, कह रही थी कि आप बहुत प्यारे आदमी हैं।
मैं थप्पड़ मार दूंगा, गंभीरता से बात सुनिए। हो सकता है कि वो अपराधियों से मिली हुई हो और खुद पर हमला करवा के वो हमारे करीब आना चाहती हो ताकि हमारी गतिविधियों पर नजर रख सके।
तो फिर उसे कोठी पर रखने की क्या जरूरत है?
ये सिर्फ अभी कयास है, हो सकता है वो सचमुच अपराधियों के निशाने पर हो।
ट्रेन की स्पीड धीमी होने लगी थी।
जाकर श्रेया को जगा दो।
कैबिन में जाकर सलीम ने श्रेया को जगा दिया। वो उठकर बैठ गई। उसने छोटी सी एक अंगड़ाई ली तो सलीम को लगा जैसे दिल के तमाम तार झनझना उठे हों। श्रेया के खुले बालों की एक लट उसके चेहरे पर झूल रही थी। उसने बालों का एक कैजुअल सा जूड़ा बनाया और नीचे उतर आई। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, उसके चेहरे पर दर्द फैल गया था। श्रेया ने सलीम के कंधे को जोर से पकड़ लिया। सलीम उसके पकड़ने के अंदाज से ही समझ गया था कि वाकई उसे ज्यादा दर्द है। नौजवान गार्ड श्रेया को बड़े ध्यान से देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सलीम और श्रेया केबिन से बाहर आ गए। ट्रेन रिंग रही थी और कुछ देर बाद ही स्टेशन पर लग गए। सोहराब ने जाकर गार्ड का शुक्रिया अदा किया और तीनों ट्रेन से उतर आए। इस वक्त शाम के तकरीबन 4 बजे थे। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर जाकर रुकी थी। पूरे प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। प्लेटफॉर्म नंबर वाला बोर्ड देखकर सलीम की जान निकल गई। उसे काफी दूर तक चलकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचना था। वो धीमी चाल से सीढ़ियों की तरफ चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसने पलट कर सोहराब से कुछ कहने की कोशिश की तो देखा उसका कहीं आता पता नहीं था। सलीम को सीढ़ियों के पास बैठा एक फकीर बड़े ध्यान से देख रहा था। सलीम को आश्चर्य हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर फकीर क्या कर रहा है, इस तरफ तो सवारियां ही नहीं आती, ज्यादातर खाली ट्रेनें या फिर मालगाड़ी ही यहां आकर रुकती है। सलीम फकीर को नजरअंदाज करता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने पलटकर देखा तो फकीर गायब था,
वो उसे कहीं जाते हुए भी नहीं दिख रहा था। 7 डार्क स्ट्रीट स्थित कोठी गुलमोहर विला के सामने सलीम की टैक्सी जाकर रुक गई। सलीम ने किराया अदा कर दिया और श्रेया को लेकर गेट की तरफ बढ़ गया।
ये तो मुझे कहां ले जा रहे हो?
अपने गरीब खाने।
मुझे मेरे फ्लैट पर पहुंचा दो।
पहले अंदर तो चलो, शाम को पहुंचा दूंगा। जब वो अंदर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सलीम को बहुत गुस्सा आया। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन उसने जो कुछ देखा वो गलत भी नहीं था। अलबत्ता श्रेया के लिए सब कुछ सामान्य ही था। दरअसल इंस्पेक्टर सोहराब गाउन पहने बड़े आराम से लॉन की घास पर टहल रहा था। उसके मुंह में सिगार था, वो गहरी सोच में डूबा हुआ था।
हुजूर, हमें धक्के खाने के लिए छोड़कर यहाँ इस तरह आराम से टहल रहे हैं, सलीम ने धीरे से कहा। उसे इस बात पर भी आश्चर्य था कि वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गया, और फिर मेकअप वगैरह छुड़ाकर इस तरह टहल रहे हैं जैसे घर पर ही रहे हों दिन भर।
सलीम और श्रेया जब उसके करीब पहुंचे तो सोहराब ने जो सवाल किया उससे तो सार्जेंट सलीम की खोपड़ी ही उलट गई।
अरे तुम लोग कहां से आ रहे हो? कहां गायब रहे इतने दिन? पुलिस ने कहां कहां नहीं तलाशा तुम्हें?
अगर श्रेया साथ ना होती तो सलीम फट पड़ता, लेकिन उसने खुद को शांत करते हुए जवाब दिया।
कुछ नहीं, बस यूं ही जरा शॉपिंग पर निकल गए थे। आप खैरियत से हैं?
ये कहते हुए सलीम ने बुरा सा मुंह बनाया। सलीम की बात सुनकर श्रेया आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगी। दरअसल श्रेया को एकदम एहसास नहीं था कि मालगाड़ी में साथ आने वाला शख्स इंस्पेक्टर सोहराब था।
आ जाओ इधर ही।
लॉन में कई सारी कुर्सियां पड़ी थी। सलीम और श्रेया जाकर वहां बैठ गए। सूरज अस्तांचल की तरफ बढ़ रहा था, उसकी किरणें नीम के पेड़ों से छनकर लॉन में पड़ रही थीं। पास ही तूफान फैन चल रहा था जिससे उन्हें गर्मी का एहसास नहीं था। सोहराब ने नौकर को फोन करके कॉफी लाने को कहा।
कैसी हैं आप?
जी अच्छी हूँ।
आपके पैरों में क्या हुआ? आप काफी लंगड़ा कर चल रही हैं।
पैरों में जख्म है।
कैसे चोट लग गई?
पैदल चलने से जख्म हो गया।
आप दोनों कहाँ लापता रहे इतने दिन? हम सब बहुत परेशान थे।
जवाब देने से पहले श्रेया ने खोपड़ी घुमाकर सार्जेंट सलीम की तरफ देखा, लेकिन वो आंखें बंद किए एकदम शांत बैठा था। सांस भी इतने धीमे ले रहा था कि बदन में हल्की सी भी जुम्बिश नहीं हो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ध्यान लगा के बैठा हो। श्रेया ने सलीम को संक्षेप में पूरी रुदात बता डाली, अपहरण होने से लेकर शोलागढ़ पहुंचने और फिर वहां से यहां आने तक। बस उसने शोलागढ़ में सोते में अपहरण और तांगे पर हमले वाली बात नहीं बताई थी। पूरी बात सुनने के बाद सोहराब ने उससे कहा,
आप बैठिए और इसे अपना ही घर समझिए। आप पैरों से जूती उतार दीजिए, आराम मिलेगा।
उसने जूती उतारी तो उसके पैरों की हालत देखकर खुद श्रेया के बदन में एक झुरझुरी सी आ गई। उसके तलवे की पूरी खाल उधड़ गई थी। दरअसल छाले पड़ने और उनके फूट जाने के बाद पैरों की यह दुर्गति हुई थी। सोहराब ने नौकर को फोन करके फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए कहा। कुछ देर बाद ही करीमा भागते हुए फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। सोहराब लॉन की घास पर बैठकर श्रेया के पैरों पर कोई लोशन लगाने लगा। हालांकि श्रेया ने उसे काफी मना किया और कहा कि वो खुद लगा लेगी।
अब आप 2 दिन बहुत कम चलिएगा, जल्दी ही पैर ठीक हो जाएगा,
सोहराब ने कहा और उठकर लॉन के एक हिस्से में वॉश बेसिन पर हाथ धोने चला गया। वो लौट कर आया तो नौकर कॉफी के साथ कुछ खाने का सामान रख रहा था। सोहराब ने उससे पानी लाने के लिए भी कहा। नौकर के जाने के बाद सोहराब ने श्रेया से कहा,
आपको कुछ दिन यहीं रहना होगा।
लेकिन मैं घर जाना चाहती हूँ,
श्रेया ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया।
इसे अपना ही घर समझिए, हम आपके घर पर इत्तला करवा देंगे।
मैं अकेली ही रहती हूँ,
श्रेया ने जवाब दिया। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने फिर कहा, लेकिन आप मुझे यहाँ रोके क्यों रखना चाहते हैं?
क्योंकि आपकी जान को खतरा है।
मेरी जान को खतरा?
जी, जैसा कि अभी आपने अपनी दास्तान सुनाई है, उससे तो यही नतीजा निकलता है कि अपराधी आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं।
सोहराब की ये बात सुनकर श्रेया उसकी तरफ देखने लगी। सोहराब से आंख मिलते ही उसके बदन में बिजली से लहराई और उसने निगाहें झुका ली। लेकिन मैं नहीं समझती कि मेरी जान को खतरा है।
आप पर कोई दबाव नहीं है, आप आजाद हैं, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि जब तक पैर ठीक ना हो जाएं आप यहीं रहिए।
सोहराब की इस बात का श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। सोहराब ने जो लोशन लगाया था उससे उसके पैरों का दर्द अब एकदम गायब हो गया था। नौकर टेबल पर जग और 3 ग्लास रख गया। सोहराब ने फर्स्ट एड बॉक्स से कुछ दवाइयां निकाली और श्रेया को देते हुए कहा,
आप इन्हें खा लीजिए, आपका जख्म तेजी से भरेगा और दर्द भी नहीं होगा।
सोहराब ने ग्लास में पानी उड़ेल कर उसे दे दिया। उसके बाद वो कॉफी बनाने लगा। सलीम अभी भी आंख बंद किए बैठा था, शायद वो बैठे बैठे ही सो गया था। सोहराब ने कॉफी का कप श्रेया को पकड़ा दिया और कुकीज की प्लेट उसके आगे कर दी। इसके बाद वो कॉफी का एक कप लेकर सलीम की तरफ चला गया। उसने सलीम को झिंझोड़ कर जगाया और कॉफी का कप उसके हाथों में थमा दिया। सलीम ने कॉफी पीने से मना कर दिया और उठकर तेजी से अपने बेडरूम की तरफ चला गया। उसने जूते भी नहीं उतारे और सीधे जाकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद ही उसके खर्राटे कमरे में गूंजने लगे। सोहराब और श्रेया बैठे नाश्ता कर रहे थे। इंस्पेक्टर सोहराब कोशिश कर रहा था कि वो श्रेया को ज्यादा से ज्यादा नाश्ता करवा दे, क्योंकि वो सुबह से ही भूखी थी। नाश्ता खत्म करने के बाद सोहराब ने श्रेया से कहा,
मेरे ख्याल से अब आपको भी आराम करना चाहिए, हम लोग रात 11 बजे डिनर पर मिलते हैं।
इसके बाद सोहराब ने फोन करके 2 नौकरों को बुलाया। उनके आने के बाद उसने कहा,
मैडम को मेहमान खाने पहुंचा दो, एक नौकर इनकी खिदमत में तैनात कर देना, इन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप दोनों इन्हें सहारा देकर ले जाइए।
दोनों नौकर श्रेया को सहारा देकर ले जाने लगे। जब वो मेहमान खाने के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां सोहराब हाथों में एक पैकेट लिए उनका मुंतजर था। उसने श्रेया के हाथों में एक पैकेट देते हुए कहा,
ये आपके कपड़े हैं, नाइट सूट और घर में पहनने के लिए।
श्रेया अभी भी घाघरा और चोली में ही थी। कमरे के अंदर आकर श्रेया ने पैकेट खोला तो उसमें नाइट गाउन के अलावा 3 जोड़ी नए कपड़े रखे हुए थे। इस काम से फारिग होकर इंस्पेक्टर सोहराब सीधे मेकअप रूम में घुस गया। 1 घंटे बाद जब वो बाहर निकला तो वो एक हीरा व्यापारी के भेस में था। उसकी दोनों उंगलियों में हीरे की कई अंगूठियां चमक रही थीं। गले में भी हीरे की एक बड़ी सी माला लटक रही थी। चेहरे पर घनी मूछें थीं और सर पर चमेली का तेल चुपड़ा हुआ था। कुछ देर बाद गुलमोहर विला से लाल रंग की फैंटम कार बाहर निकल रही थी। उसे सोहराब का नौकर करीमा ड्राइव कर रहा था। करीमा इस वक्त शोफर की वर्दी में था। हीरों का व्यापारी बना इंस्पेक्टर सोहराब इस वक्त कैप्टन किशन के सामने बैठा हुआ था। ये जगह कैप्टन किशन का ऑफिस थी। किसी के दफ्तर को देखकर उसके बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। कैप्टन किशन के मिजाज के मुताबिक ही उसका ऑफिस काफी बड़ा और सलीके से सजाया गया था। बड़ी बड़ी खिड़कियों पर रेशमी पर्दे झूल रहे थे। उन पर्दों पर उड़ती चिड़ियों की तस्वीरें थीं। बैकग्राउंड में जंगल का मंजर था। कैप्टन किशन के ठीक पीछे की पूरी दीवार पर एक बड़ा सा कांच लगा हुआ था। कांच के पीछे जंगल का दृश्य था। लाल पत्तियों वाले कई सारे दरख्त नजर आ रहे थे। सामने कांच लगी होने से एहसास होता था कि उसके पीछे सचमुच का जंगल है। सिर्फ इतना ही नहीं, लाइट का संयोजन कुछ इस तरह रखा गया था कि वक्त के साथ ही जंगल के इस दृश्य की रोशनी भी बदलती थी। रात होने पर यहाँ अंधेरा छा जाता था। सोहराब हीरों का व्यापारी बनकर पिछली बार उससे मिलने उसकी कोठी पर गया था। तब वो लॉन में ही बैठे थे। आज ये मुलाकात कैप्टन किशन के ऑफिस में हो रही थी।
साईं, मैं कह रहा था कि ये शोलागढ़ फिल्म जल्द से जल्द पूरी कर डालिए। हम जितनी जल्दी फिल्म रिलीज करेंगे उतनी ही ज्यादा कमाई होगी।
हीरों के व्यापारी बने सोहराब ने आवाज बदलते हुए कहा,
अरे आप एकदम परेशान ना होइए, बस कुछ ही सीन बचे हैं, हम जल्द ही उन्हें पूरी करने के बाद एडिटिंग और डबिंग का काम शुरू कर देंगे।
शेयाली का तो कोई सीन नहीं बचा हुआ है?
नहीं नहीं, उसके सारे सीन शूट हो चुके हैं। कुछ एक लॉन्ग शॉट के सीन हैं, हम उन्हें बॉडी डबल से शूट कर लेंगे। अब बस थोड़ा डबिंग में दिक्कत आएगी, उसके लिए हम पूरी आवाज़ ही किसी दूसरे की इस्तेमाल करेंगे, फिर तो काम बढ़ जाएगा। कुछ खास नहीं। अब फिल्म रिलीज कब करना चाहते हैं? साईं, आप आज हमें प्रिंट दें, अरे हम कल रिलीज कर लें।
सौरभ ने कैप्टन किशन की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा,
प्लानिंग क्या है आपकी? देखो साईं, हॉरर फिल्मों का कोई सीजन तो होता नहीं है, ना कोई त्योहार का इंतजार करना पड़ता है। बस मैं प्रमोशन जबरदस्त चाहता हूँ। प्रमोशन की पंच लाइन होगी, देखिए शयाली की आखिरी फिल्म।
सोहराब की इस बात पर कैप्टन किशन के चेहरे पर एक रंग आकर चला गया। उसने सोहराब की तरफ देखते हुए जरा गर्म जोशी से कहा,
आपको रोकड़ जरा बढ़ाना होगा। साईं, रोकड़ की बात मत करो, हम आपकी कमाई में परसेंटेज बढ़ा रहे हैं ना। आप पहले फिल्म तो जल्दी कंप्लीट करो, बस थोड़ा इंतजार। और साईं, आप किसी मोबाइल ऐप के भी तो ओनर हो?
हाँ, एक है ना अपना, 2 हफ्तों में ही उसकी डाउनलोडिंग 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है। ऐप का क्या करना है, कोई प्रोजेक्ट है क्या?
अरे अपन उस पर भी प्रमोशन करेंगे ना साईं।
उस पर ऐड के लिए रोकड़ लगेगा।
अरे तुम रोकड़ की फिक्र मत करो, अरे वो अपन के पास बहुत है,
सोहराब ने कहा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने कैप्टन किशन के पीछे की सीनरी पर अंधेरा फैलते देख लिया था। कैप्टन किशन ने उससे बड़ी गर्म जोशी से हाथ मिलाया। वो कुछ रस्मी गुफ्तगु करते हुए उसे लॉन तक छोड़ने भी आया। बाहर हल्का अंधेरा छा चुका था। सोहराब फैंटम पर सवार हो गया और शॉफर ने कार आगे बढ़ा दी। कैप्टन सोहराब ने श्रेया को उसके घर इसलिए नहीं जाने दिया कि उसकी जान खतरे में है या सोहराब को उस पर शक है। हीरों का व्यापारी बनकर वो कैप्टन किशन से मिलने क्यों गया था? इन सारे सवालों के जवाब के लिए सुनिए शोलागढ़ @34 किलोमीटर का अगला भाग सिर्फ गाथा पर।